दंडोत बंदन अनकवार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। बेसुमार अथाह अगनत अतोले ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बोले। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी की हजूरी में उपस्थित गुरु की साजी निवाजी साध संगत जी, गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, हम लोगों के कल्याण के लिए सुखमनी प्रदान किए। सुखमनी का भाव ये है परम ज्ञान, सुखमनी का भाव है ब्रह्म ज्ञान। क्योंकि जब जीवन में अज्ञान सहित सभी दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति होती है, उसी को ब्रह्म ज्ञान, उसी को मोक्ष, उसी को सुखमनि, उसी को परम पद, उसी को तुरीयावस्था और उसी को जीवन का सार कहते हैं। जो व्यक्ति मौत से पहले पहले उस परम दशा को प्राप्त कर लेता है, उसका मौत नहीं होता, वह अकाल हो जाता है। तीनों गुण काल के अंतर्गत है, लेकिन जो गुरु की कृपा से, शास्त्र की कृपा से, ईश्वर की कृपा से और स्वयं की कृपा से ब्रह्म ज्ञान को पा लेता है, वह व्यक्ति जीते जी मुक्त हो जाता है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ऐसे पुरुष की, जिसने इन चार कृपाओं के द्वारा ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है, उसका लक्षण बता रहे हैं। ऐसा पुरुष, ये चार कृपाएं क्या है? पहला है ईश्वर कृपा। ईश्वर कृपा से आपको यह मनुष्य शरीर मिला है। जगतगुरु शंकराचार्य जी ने कहे हैं कि दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। इस दुर्लभ शरीर को पाना और दुर्लभ शरीर को पाकर किसी संत महापुरुष ब्रह्मज्ञानी का मिलाप हो जाना और तत्पश्चात प्रभु से मिलने के लिए तड़प पैदा हो जाना, ये तीनों चीज इस जगत में दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है। और जिसको मिल जाए उससे बड़ा भाग्यशाली इस जगत में कोई भी नहीं। ईश्वर की कृपा है कि आपको यह मानस शरीर, मनुष्य शरीर मिला है। और शास्त्र की कृपा यह है कि जब आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो वह आपको समझ में आता है। और तीसरा है गुरु की कृपा। जिस ब्रह्मज्ञानी महापुरुष ने अपने गुरु के द्वारा अंधकार को दूर किया हो और परम प्रकाश का अनुभव किया हो, उसका यदि आपका संग हो जाए, उसके चरणों में यदि रहने का आपको अवसर प्राप्त हो, तो जो उसकी कृपा है वह भी एक महान है। ईश्वर कृपा, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा और चौथी अपनी कृपा है। अपनी कृपा सबसे ज्यादा महान है। ईश्वर के कृपा से मनुष्य शरीर मिला है, शास्त्र की कृपा से आपको शास्त्र समझने की क्षमता भी पैदा है और गुरु आपको ज्ञान भी देना चाहता है, लेकिन स्वयं प्रयत्न नहीं करते तो यह तीनों कृपा का विशेष लाभ नहीं हो पाता। इसीलिए जीवन में संकल्प कि जैसे रोटी जरूरी है, कपड़ा जरूरी है तन के लिए, और मन के लिए ध्यान जरूरी है। ध्यान से मन वश में होता है, ध्यान के द्वारा मन विषयों से हटकर अपने आत्मा में लगता है। रोटी कपड़ा और मकान से शरीर सुरक्षित होता है, ध्यान से मन सुरक्षित होता है, और गुरु के ब्रह्म ज्ञान से आत्मा ही परमात्मा है ऐसा ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, जिससे जीवन सफल हो जाता है। आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है, ऐसा ब्रह्म ज्ञान गुरु की कृपा से होता है। लेकिन स्वयं की कृपा का इतना ज्यादा महत्व है कि यदि तुम प्रयत्न नहीं करोगे तो तीनों कृपा का कोई विशेष लाभ नहीं होगा। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं श्लोक, मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेख एकस बिन कोए, नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। मन साचा मुख साचा सोए, जो मन में है वही वाणी में है और वही जीवन में है, जो तीनों एक है, जो वो सोचता है अंदर और वही बाहर उसके जीवन में है, और एक प्रभु के अलावे वो कोई और नहीं दिखता है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी है। वेद में एक मंत्र आता है कि मृत्यु स मृत्युम आपनोति स एह नानत्व पश्यति। जो इस जगत में अलग अलग देखता है कि जगत और है, ईश्वर और है, मैं और हूं, पदार्थ और है, जो भिन्न भिन्न देखता है, मृत्यु स मृत्यु आपनोति, उसका बार बार जन्म बार बार मरण होता है। यहां पर गुरु महाराज उपदेश कर रहे हैं, गीता में भगवान कृष्ण ब्रह्म ज्ञानी का लक्षण बता रहे हैं। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा, ऐसा संत, ऐसे ब्रह्मज्ञानी दुर्लभ हैं, करोड़ों में कोई होते हैं जो सब में प्रभु का दर्शन करते हैं। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। उसी चीज को गुरुवाणी में भी आता है, ब्रह्म दिशय ब्रह्म सुनिए, एक एक वखाणिए, आत्म पसारा करण हरा, प्रभु बिना नहीं जानिए। ऐसा जो व्यक्ति है वो ब्रह्म ज्ञानी है। यहां पर एक और बहुत सूक्ष्म बात है जो जानने योग्य है, वो ये चार चीजें हैं। एक है जीव, दूसरा है आत्मा, तीसरा है ईश्वर, चौथा है ब्रह्म। आम लोग ब्रह्मा और ब्रह्म को एक समझ बैठते हैं, जो कि आसमान जमीन में फर्क है। ब्रह्मा अनेक हैं, ब्रह्मा सृष्टि को रचता है, और एक ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मा होता है। ऐसे हजारों ब्रह्मांड हैं, पाताल पाताल लख आकाश आकाश। हजारों ब्रह्मांड हैं और हजारों ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा हैं। एक सृष्टि की रचना करने वाला एक ब्रह्मा है, लेकिन ब्रह्म है अनेक नहीं है। ये जितने भी लोक हैं, अनंत ब्रह्मांडों का ब्रह्मा अनेक है, लेकिन ब्रह्म एक है। एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान, जीव तिस भावे तिवे चलावे, जीव होवे फुरमान। ओह वेक है, ओह का मतलब ब्रह्म। ओह वेक है, ओना नदर ना आवे। ब्रह्मा विष्णु महेश को एक जो ब्रह्म है, जिसको अकाल पुरुष कहते हो, जिसको वाहेगुरु कहते हो, जो कालातीत है, वो कैसा है उसको ब्रह्मा विष्णु महेश को पता नहीं। ओह वेक है, एक अकाल पुरुष वाहे गुरु ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश को देखता है। ओह वेक है, ओना नदर ना आवे, एक तीनों को उसकी गतमित का पता नहीं चलता। बहुता एहो विडान, यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। जीव किसको कहते हैं? पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पांच प्राण और मन बुद्धि। इसके अंदर जो चेतन की छाया है, चेतन सहित जो ये सतारा हैं, इसको जीव कहते हैं। और यही जीव मरने के बाद इस शरीर से निकल जाता है और निकलकर माता के गर्भ में जाता है। और भी एक रहस्य की बात बताता हूं कि जब मां कोई स्त्री गर्भवती होती है तो 4.25 महीने तक सिर्फ लोथड़ा ही तैयार होता है। 4th महीने जाकर के जीव प्रवेश करता है तो उस स्त्री को द्विज कहते हैं। द्विज का मतलब अब इसके अंदर दो आत्मा हो गए, एक स्त्री की अपनी आत्मा जीवात्मा और एक बच्चे की जीवात्मा, फिर वो दो हो जाती है। इसीलिए स्त्री को चाहिए कि 4th महीने के बाद अपने कमरे में महापुरुषों का चित्र लगाया करें, साहेब गुरु नानक देव जी का, गुरुओं का, भक्तों का, सूरवीरों का चित्र रखें। और वो जैसा चिंतन करेगी, जैसा देख करके सुमरण करेगी, पाठ करेगी, तो आगे चल करके बच्चा भी वैसा ही भक्त पैदा होगा, सूरवीर पैदा होगा। नहीं तो डिस्को देखता हुआ बच्चा पैदा होगा ना, तो बचपन से ही वो बात नहीं मानेगा तेरा। बीज हम गलत बोते हैं और बाद में कहते हैं कि बच्चा मेरा बात नहीं मानता। बच्चे को सुधारने में, बच्चे को एक भक्त बनाने में, सूर बनाने में मां का सबसे ज्यादा रोल है। उतना रोल इस जगत में किसी का नहीं। एक मां चाहे तो बच्चे को गर्भ में ही ब्रह्म ज्ञान दिला सकती है। यदि कोई स्त्री गर्भवती बालक को किसी ब्रह्मज्ञानी संत के पास जाकर के ध्यान करके ब्रह्म ज्ञान सुनती है तो बच्चा पैदा होते ही ब्रह्मज्ञानी होगा, ऐसा हुआ है। अष्टावक्र की माँ रोज वेद का पाठ सुनती है और कथा सुनती है, और अष्टावक्र गर्भ में ही था, उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया। सुखदेव जी गर्भ में थे और जब उन्होंने भागवत सुने, उनकी माता ने, पैदा हुए ब्रह्मज्ञानी थे। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। इसलिए साथ संगत जी, इस जगत को सुधारने में हमारी बहनों का, माताओं का सबसे ज्यादा रोल है, सबसे ज्यादा। जननी जनय त भगत जन, कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवा बहन। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं कि मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेख है एकस बिन कोई। एक ब्रह्म के अलावे, एक वाहेगुरु अकाल पुरुष के अलावे कुछ भी ना देखे। दो दृष्टि है, एक विषय दृष्टि है, आकार दृष्टि है, कार्य दृष्टि है, और दूसरा कारण दृष्टि है। क्योंकि यह विषय समझना बहुत जरूरी है कि जैसे यहां पर हजार घड़े रखे हों, कोई लाल कोई पीला कोई सुराही के आकार का, उसके आकार अलग अलग हों, हजार घड़े हों, तो एक तो दृष्टि है घड़े की, आकार पर हमारी दृष्टि है, और एक दृष्टि है मिट्टी की। जो ज्ञानी पुरुष है वो मिट्टी को देखता है कि ये हजार घड़े नहीं हैं, ये सब मिट्टी ही मिट्टी है, और जो अज्ञानी पुरुष है वो आकार को देखता है कि ये घड़ा है ये सुराही है, ऐसा देखता है। पांच चीजें हैं, अस्ति भांति प्रिय सिंधु में, नाम रूप जंजाल, लखहिं आत्म स्वरूप निज, होहिं तत्काल निहाल। पांच चीजें हैं। अस्ति का मतलब है, अस्ति का मतलब सत्य होता है, है मीन्स एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, जो आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक हो से भी सच, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की चर्चा है, और यदि उत्तम अधिकारी होगा तो ये सुनते ही ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। पांच चीजें, अस्ति, अस्ति का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, है जिसका कभी अभाव ना हो, जो तीनों कालों में एक जैसा हो, उसको अस्ति कहते हैं, उसको सत्य कहते हैं, उसको एग्जिस्टेंस कहते हैं, और उसको ब्रह्म कहते हैं, अस्ति। और दूसरा है भांति, भांति का मतलब होता है चेतन, भांति का मतलब होता है ज्ञान स्वरूप, और भांति का मतलब होता है वह जो स्वयं को जानता है और सबको जानता है, उसको भांति कहते हैं, अर्थात सत चित, अस्ति भांति, और तीसरा है प्रिय, प्रिय का मतलब आनंद, आनंद नाम परमात्मा का है, आनंद नाम सुखमणि का है, सुख का उल्टा दुख होता है, दुख का उल्टा सुख होता है, और जो सदा सुख है उसको आनंद कहते हैं, और आनंद नाम परमात्मा का है। ये विषय थोड़ी कठिन है, लेकिन यही यही ब्रह्म ज्ञान आपको उस परम पद को ले जाएगा। इसीलिए सत्संगियों को फिजूल चीजें नहीं सोचना है ना सुनना है, सत्संग सुनना है और सत्संग का ही विचार करना है। ज्यादा संसार की बातों को नहीं सुनना है। जो सुनोगे उसी का विचार होगा, उसी का चिंतन होगा, और आज नहीं कल वही तुम हो जाओगे। इन द बिगनिंग यू शुड मेक हैबिट, इन द लॉन्ग रन हैबिट मेक्स यू। पहले तुम्हें जीवन में आदत बनाना पड़ेगा, समय आने पर आदत ही तुमको बना देगा। अस्ति भांति प्रिय सिंधु में, सिंधु नाम सागर का है। नाम रूप जंजाल, इस जगत में जो भी कुछ दिख रहा है उसका कोई ना कोई नाम है और कोई ना कोई रूप है। इसको बहुत गौर से सुनना, और खास करके जिन लोगों ने ध्यान के क्लास को अटेंड किए हैं उसके लिए तो विशेष जानने की चीज है, क्योंकि आप लोगों को बैकग्राउंड सारा कुछ पता है। इस जगत में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसका कोई ना कोई नाम ना हो और उसका रूप ना हो, लेकिन एक अकाल पुरुष है जिसका ना कोई नाम है ना कोई उसका रूप है। क्योंकि चक्र चिहन और बरन जात और पात नहंज, रूप रंग और रेख भेख को कह न सकत कह, अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहे जाए। इस जगत में तीनों लोकों में जितने भी वस्तु हैं उसका कोई ना कोई नाम है, कोई ना कोई रूप है। नाम और रूप को छोड़ दो, क्योंकि इस जगत में पांच चीजें हैं, अस्ति भांति प्रिय नाम और रूप। ये पांच चीजों में दो को त्याग देना है, नाम और रूप को। तीन चीजों को ग्रहण करना है, सत चिद आनंद, और सत चित आनंद को सचिदानंद कहते हैं। साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जाप साहेब में अकाल पुरुष को सचिदानंद के नाम से पुकारे हैं, और वह सचिदानंद को का ही दूसरा नाम ब्रह्म है, और जो उसको जान लेता है उसको ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। इसी बारे में साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं कि मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेख एकस बिन कोई। एक दृष्टि है कि हम घड़ा देखते हैं, सुराही देखते हैं, और एक दृष्टि है कि घड़े तो हजार हैं लेकिन है तो मिट्टी ही ना। एक मिट्टी का सुराही बना है, दीवा बना है, घड़े बने हैं। मान लेते हैं एक मिट्टी से हजार बर्तन बने हों और सबका नाम अलग है, सबका रूप अलग है, लेकिन एक दृष्टि है मिट्टी के सब मिट्टी है, और दूसरी दृष्टि क्या है कि सुराही और घड़ा दीवा। ब्रह्म ज्ञानी मिट्टी देखता है और संसारी व्यक्ति घड़ा देखता है, दीवा देखता है। यह जो सारा संसार है यदि इस संसार के नाम और रूप को देखोगे तो तुम संसारी कहलाओगे, लेकिन नाम रूप को छोड़कर इस जगत का जो अधिष्ठान है वाहेगुरु अकाल पुरुष, यदि वो देखोगे कि यह सारा ब्रह्मांड संसार परमात्मा से पैदा हुआ है, परमात्मा के सहारे टिका हुआ है और पुनः परमात्मा में लय हो जाता है, ऐसी दृष्टि जो है वो ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि होती। जैसे जल तरंग और फेन बुदबुदा जलते भिन्न न हुई, तरंग और फेन बुदबुदा बुलबुले पानी से पैदा होते हैं, पानी के सहारे टिकता है और पानी में लय हो जाता है। होता पानी ही है। इसी तरह से ये जो सारा ब्रह्मांड तुमको दिख रहा है, ये परमात्मा से पैदा हुआ है, परमात्मा के सहारे टिका है, परमात्मा में लय हो जाता है। ऐसी जिसकी दृष्टि है कि जैसे जल और तरंग में कोई भेद नहीं है, इसी तरह से वाहेगुरु और जगत में कोई भेद नहीं। ऐसा जिसको ज्ञान है, निश्चय पूर्वक गुरु के द्वारा सेवा करके जिसने ये ज्ञान को पाया है, वो ब्रह्मज्ञानी है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, मन साचा मुख साचा स्वये अवर न पेख है एकस बिन कोई। एक देखना है, ब्रह्म दिशे ब्रह्म सुनिए, एक एक बखानी, आत्म पसारा करण हरा प्रभ बिना नहीं जानी। अवर न पेख है एकस बिन कोए, नानक एह लक्षण ब्रह्मज्ञानी सोए होए। ब्रह्मज्ञानी का यही लक्षण है कि वो कारण को देखता है, कार्य को नहीं देखता। ये जगत कार्य है और जो ब्रह्म है वो कारण है। अष्टपदी। फिर जिसने गुरु ब्रह्मज्ञानी गुरु की सेवा करके ब्रह्म ज्ञान को पा लिया है, उसका लक्षण बता रहे हैं वो कैसे होते हैं महापुरुष। एक समय की बात है, धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज के पास एक सिख, उसका नाम था भगवान दास। एक बार भगवान दास देखता क्या है कि बाबा जी कमरे में अपने केस को रस्सी से बांध दिए हैं और अखंड समाधि में बैठे हैं। उसके चित्त में आया कि मैं क्यों नहीं ऐसा कर सकता हूं। भगवान दास गया और उसने भी अपना केस जो है बांध दिया ऊपर, वो भी ध्यान करने लगा परमात्मा। आधी रात को उठ के जब उसको नींद सताया, कुछ उसको होश नहीं पता चला, वो नींद के कारण जो है उसका सिर नीचे को गिरा, नीचे पत्थर था, नीचे लग करके खून निकलने लगा और सोचा कि नहीं ये काम ठीक नहीं है, मैं तो आनंद के लिए तितिक्षा किया था, ध्यान किया था, ये तो और हमने शरीर को खराब कर लिया। दूसरे दिन बाबा जी का दर्शन करने के लिए जाता है भगवान दास। देखो घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते हैं, भगवान दास रीस नहीं करना चाहिए, बस इतना ही कहना था। भगवान दास को पता चल गया कि जो हमने किया है ये बाबा जी को पता हो गया। क्या हुआ इस यहां पर चोट तुमको लग गया, खून क्यों बग रहा है? उस पानी पानी हो गया भगवान दास, चरणों में गिर पड़ा, कहे सच्चे पातशाह आगे से ये गलती नहीं होगी। सुन गला आकाश की कीटा आयरीस। कभी कभी भी महापुरुषों का ब्रह्मज्ञानियों का रीस नहीं करना चाहिए। गुर कहे सो कार कमावो, गुर की करनी काहे धाम। पहले ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुष गुरु के पास जाओ, जा करके लंबे पढ़ के नमस्कार करो नम्रता भाव से, फिर सेवा करने लग जाओ और वो पूछें कि बेटा तुम्हारा यहां आने का क्या प्रयोजन है, तो वहां पर उनके चरणों में रो जाओ, रो करके बोलो कि सच्चे पातशाह मैं अनंत जन्मों से सत्य की खोज के लिए बार बार जन्म ले रहा हूं, वह सत्य का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान मुझे किस प्रकार हो जाए। और सिर देतियां जे सौ मिले तो भी सस्ता जान, आप जो कहोगे उसका मैं पूरा पूरा पालन करूंगा। और फिर गुर कहे सो कार कम, हुक्म मणिये होवे प्रमाण तक खसमय का महल पर। उसके बाद जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु संत साधु जो बोले उसके लिए प्राण भी देना पड़े तो कोई दाव पर लगा देना, क्योंकि ऐसे शरीर तुमने अनंत बार हजारों बार धारण किए हो और खा पी करके जो है ईट ड्रिंक एंड बी मेरी समाप्त कर दिया है। क्यों ना हो, यह नाशवान शरीर से, क्षण भंगुर शरीर से, पंच भौतिक शरीर से यदि अकाल पुरुष मिल जाए, वाहिगुरु का अनुभव हो जाए तुमको और जीवन मुक्त हो जाओ, और क्या चाहिए। इसलिए साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ब्रह्मज्ञानी का लक्षण बता रहे हैं। महापुरुषों का कभी रीस नहीं करना चाहिए, वो जो आज्ञा करे उसका पालन करना चाहिए। अष्टपदी, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप। ब्रह्मज्ञानी रहता तो इस जगत में है, वो भी खाता पीता है हमारे आप जैसा ही, रोटी पानी कपड़ा भी पहनता है। कभी कभी जगत के लोग शंका भी कर लेते हैं, ये भी जो खाते हैं हम भी खाते हैं, ये भी सोते हैं हम भी सोते हैं, अंतर क्या है। अंतर बहुत है, अंतर इतना है कि वो सब तरफ ब्रह्म देखते हैं, हम सब तरफ जगत देखते हैं, दृष्टि में फर्क है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। भावना का फर्क है, दृष्टि का फर्क है, आंख का फर्क है और ज्ञान का फर्क है। हमारी विषयों का ज्ञान है, उनको ब्रह्म ज्ञान है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी का जीवन बता रहे हैं कि इस जगत में रहते हुए वो किस प्रकार रहते हैं। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। जिस प्रकार से कमल का फूल रहता तो जल में है, जल में पैदा होता है और जल में रहता है, लेकिन जल उसको स्पर्श नहीं करता। कमल के फूल को बाहर निकालो तो सूखा ही रहता है, गिल्ला नहीं होता। इसी तरह से एक उदाहरण के माध्यम से साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानी रहता तो इसी जगत में है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म ज्ञानी आकाश में कोई ऑफिस लगा कर बैठते, ऐसा नहीं है। हमारे आप जैसे ही रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, सब कुछ करता हुआ, सब कुछ भोगता हुआ भी अभोक्ता होते हैं। कमल के फूल के समान निर्लेप होते हैं। जैसे जलमह कमल निरालम, मुरगाई नैसाणे, सुरत सबद भव सागर तरिये, नानक नाम बखाने। इस जगत में रहता हुआ भी ऐसे रहता है कि जब ये शरीर हमारा नहीं है तो शरीर के साथ जो सारा जगत का संबंध है ये कैसे हमारा होगा। तीन शरीरों, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों शरीरों से अपने को अलग आत्मा जानता है, साक्षी। और साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, साक्षी नाम आत्मा का है। जो तीनों शरीरों को जानता है, ये तीनों शरीर आत्मा को नहीं जानता। ऐसा जो जानने वाला आत्मा है साक्षी, साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, नहीं भेद को गंध, राग द्वेष मति के धर्म, तामय माने अंध। राग द्वेष सुख दुख हर्ष शोक ये मन में होते हैं, आत्मा में नहीं होता। आत्मा इससे अतीत है, आत्मा तो ब्रह्म का स्वरूप है, आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप है। इसीलिए गुरबानी में आता है आत्म चिनस परमात्म सोई, जिसने आत्मा को जान लिया वही परमात्मा है और परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं। और ध्यान के माध्यम से 7 दिनों में यही बताई जाती है कि तुम तीनों शरीरों से अलग, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों शरीरों से अलग, इन तीनों शरीरों को जानने वाला तुम आत्मा, तुम शरीर नहीं। ये तो 3 कपड़े हैं और उसका अनुभव कराया जाता है। यदि व्यक्ति जिस तरह ये 7 दिन में बताया जाता है उसको जीवन पर्यंत जब तक श्वास है उसका अभ्यास करे, क्योंकि कमाई करने से कोई अमीर होता है, बता देने से नहीं, बताने के बाद में अभ्यास करो, उसको बढ़ाओ, आधा घंटा, फिर घंटा, फिर 2 घंटा, आंख बंद करो, अंतर ध्यान हो जाओ। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ही आपकी वृत्ति परमात्मा के चरणों में जुड़ेगी और एक ऐसा दिन आएगा कि आपका जीवन वैसे महापुरुष के जैसा हो जाएगा जैसा भगत रविदास, कबीर। इस जीवन में कोई असंभव नाम की कोई चीज नहीं है। यू हैव द पॉसिबिलिटी टू बिकम गॉड। प्रत्येक आदमी के अंदर यह क्षमता है कि वो परमात्मा हो सकता है। क्यों? क्योंकि आत्म चिनस परमात्म सोई, जो आत्मा को जान लेता है वही परमात्मा है और वो आत्मा सबके अंदर है। सिर्फ प्यास, लगन, तड़फ और कोई ऐसा सदगुरु, ऐसा कोई संत महापुरुष जो हर्षों देवे जोर, उसके लिए कुर्बानी करो। गुरु महाराज देखो कितना उपदेश करते हैं, तन मन धन शीश भेंट देऊं जो हर की बात सुनावे। जो सिर्फ हरि की चर्चा सुनावे उसके लिए तन मन धन शीश भेंट दो। और जब कोई कहता है ना, स्वामी जी काम, हमको काम है और समय नहीं है, तो मैं उदास हो जाता हूं उसकी जिज्ञासा को देख के, तरस भी आता। जिसको अभी और बातों के लिए समय है, ब्रह्म ज्ञान के लिए, जो जीवन का लक्ष्य है, इसके लिए समय नहीं है, इसका मतलब वो अधिकारी नहीं है। जिसको एक साधारण जगत में किसी से प्रेम हो जाए उसको सारी रात नींद नहीं आती, और जिसको प्रभु परमात्मा से प्रेम हो जाए वो सोएगा। साहेब गुरु नानक देव जी महाराज 1 बजे रात को उठ के बैठे हैं और राम 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 का सुमरण कर रहे हैं। उनकी माता कहती है, बेटा तुम सो जाओ, सारा जगत, सारे पशु पंछी सारे सो गए, तुम भी सो जाओ। साहेब गुरु नानक देव जी कहते हैं, माँ भावे जगत सो गया हो लेकिन एक प्रेमी पपीहा वो नहीं सोया है, वो अपना प्रेमी को याद कर रहा है। एक पशु हो करके और एक पंछी, एक मादा पंछी एक नर पंछी को प्रेम कर रहा है और सारी रात नहीं सो रहा है, मैं इंसान होकर के मैं सो जाऊं? मेरा उस पंछी के साथ कंपटीशन है। वो पंछी होकर के अपने प्रेमी के याद में नहीं सोता, मेरा जो प्रेमी है परमात्मा वाहेगुरु, जब तक वो मेरे हृदय में बस ना जाए, एक मिक ना हो जाए, मैं माँ कैसे सोऊं? उस वक्त उनकी माता के आंखों में करुणा की, दया का आंसू बह गया और गुरु नानक देव जी के चरणों में मस्तक रख दी, कहते तुम धन्य हो। सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान, जब तुम्हारा जीवन पवित्र होगा, लोगों का तुम भला तुम्हारे चित्त में होगा, सारा जहान तुमको पुस्तुत करें। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप। जैसे कमल पानी में रह करके भी अलेप रहता है, ब्रह्म ज्ञानी इस संसार में रहता हुआ भी अलग सा होता है। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को सोख। जैसे सूर्य की किरणें हर एक जगह पड़ती हैं, फूलों पर भी और गंदगी पर भी, जल में कोई भी ऐसा जगह नहीं है, सूरज की किरणें सब जगह पड़ता है। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष, ब्रह्म ज्ञानी जो है दोष रहित होता है, करता हुआ भी अकर्ता होता है, भोक्ता हुआ भी अभोक्ता होता है। ऐसा जो ब्रह्म ज्ञानी है उसका उदाहरण दे रहे हैं कि वो सूर्य के समान होता है। जैसे सूर्य सर्व को सोख, सूर्य जो है वो सबको प्रकाशता है, बिष्टा हो या फूल हो सबको रोशनी देता है, उसके अंदर द्वैत भाव नहीं होता। सूर्य के अंदर, ब्रह्म ज्ञानी के अंदर भी द्वैत भाव नहीं होता। तुमको अपनी अज्ञानता के कारण दिख सकता है कि वो द्वैत करते हैं, लेकिन वो द्वैत नहीं करते। ब्रह्म ज्ञानी तो दाता होता है। ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक, ज्यों वसुधा को खोदय को चंदन ले। आहा, साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी के धैर्य पेशेंस की महानता को बता रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानी के अंदर कितना धीरज होता है। इसीलिए ध्यान के क्लास में दो बातें मैं बताता हूं, ध्यान प्लस धैर्य। ध्यान के साथ धैर्य नहीं होगा तो चार दिन ध्यान करोगे फिर कहोगे कुछ होता तो है नहीं, छोड़ो की लेना देना है। जैसे तुमको जल चाहिए, प्यास लगा है और जल चाहिए, तो एक फीट एक जगह खोदो, एक फीट और दूसरा जगह खोदो, सारी पृथ्वी को सारी जिंदगी एक एक फीट खोदते जाओ, जल नहीं मिलेगा। लेकिन एक ही जगह 100 फीट खोदो, जल निकल जाएगा और तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। ध्यान है अंदर की खुदाई, और जब खुदाई करोगे ना, अंदर प्रवेश करोगे, तो शुरू में कंकड़ पत्थर ही हाथ लगेगा, उदासी लगेगा। 2 दिन ध्यान करोगे, अच्छी तरह ध्यान नहीं लगा, चलो छोड़ो पहले ही चंगा था मैं, चंगा सी ऐसा बोलोगे, लेकिन वो चंगा नहीं, वो मंदा ही सी। चंगा तो तब बनना है जब तुम अंदर प्रवेश करके सुखमणि को प्राप्त करोगे, उसके बगैर चंगा हो नहीं सकता। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश करते हैं, ब्रह्म ज्ञानी का धीरज एक। जैसे धरती को कोई व्यक्ति खोदे, गणासा लेकर के या खुरपी से कोई खोदे उसको, तो धरती को कोई दुख नहीं होता। या कोई व्यक्ति चंदन लेप करके उसको पूजा करे, चंदन लगा करके लेप लगाओ धरती को, तो धरती खुश नहीं होती, और कोई उसको खोदे तो उससे दुखी नहीं होता। दोनों को एक समान प्रेम करता है। इसी तरह से ब्रह्म ज्ञानी जो है को कोई ईर्ष्या करे, कोई बुरा बोले, या कोई उस्तत करे, क्योंकि उस्तत और निंदा से दोनों से ऊपर उठा होता है ब्रह्म ज्ञानी। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी का धीरज एक, ज्यों वसुधा को खोदे को चंदन ले। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाव, नानक ज्यों पावक का सहज स्वभाव। जैसे अग्नि नाम प्रकाश का है, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाव, ब्रह्म ज्ञानी की यही विशेषता है कि जिस प्रकार से अग्नि जो है वो सबको समान रूप से प्रकाश देता है, अग्नि ये नहीं देखती कि ये दुश्मन है, इसको थोड़ा प्रकाश देना है और ये दोस्त है, इसको ज्यादा देना, ऐसा नहीं, समान रूप से प्रकाश देती है। यही लक्षण इसी प्रकार के ब्रह्मज्ञानी होते हैं। और ब्रह्मज्ञानी के अंदर तो हृदय में दया होता है, करुणा होता है। एक समय की बात है कि साहेब श्री गुरु रामदास जी के समय में एक आदम नाम का एक भक्त हुआ है, बठिंडा का इलाका है, उस इलाके में एक आदम नाम का गुरसिख हुआ है। उम्र काफी हो गया, कोई पुत्र नहीं हुआ, और ऐसा कहते हैं कि तीन चीजें जो है पैसे से नहीं मिलती है। यूता है नी जगत में किसे चीज दा नेम, पर तिन्ने मूल ना मिले पारस पुत्र और प्रेम। पुत्र और पारस पत्थर और प्रेम, ये तीनों जो है मोल नहीं मिलता है। पुत्र जो है परमात्मा की एक नियामत है, और प्रेम भी खरीदा नहीं जाता है। प्रेम ना हाट बिकाए, किसी दुकान में प्रेम जो है बिकता नहीं है। प्रेम तो जो है जो सिर देगा, जो मरने को तैयार है, यह इश्क नहीं आसां, आग का दरिया है और डूब के जाना है। परमात्मा का जो मार्ग है इतना सरल और इतना कठिन भी है कि इसमें तो जो है लोगन की चतुराई उपमा ते बैसंतर जार। लोग क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, कबीर जी कहते हैं इसको पहले अग्नि में जलाओ। लोगन की चतुराई उपमा ते बैसंतर आओ जार, तो आओ हमारे पास। कबीर जी कहते हैं मेरे पास जिसको आना है पहले लोगन की चतुराई उपमा जो है, कौन तुमको उस्तत करते हैं, कौन तुमको बुरा कहते हैं, ये सारी बातों को अग्नि में जला के फिर मेरे पास आना। भाई आदम का उम्र काफी हो गया, लगभग 40 साल हो गया, 45 साल, अभी तक कोई पुत्र नहीं, और आयु बढ़ती गई, लगभग 70 साल का हो गया। लेकिन जब तक जीता है ना व्यक्ति, पुत्र ना होने पर अंदर खास करके स्त्री के अंदर विशेष दुख होता है। एक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष जा रहे थे, भाई आदम बेंती करके अपना घर निमंत्रण दिए प्रसादा छकने के लिए। वो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष उसकी बेंती को सुनकर के घर में आए। वो जानते कौन थे? वो भाई गुरदास जी थे। भाई गुरदास जी भी ब्रह्मज्ञानी है, साधारण नहीं। वहां प्रसादा छकने के बाद भाई गुरदास जी पूछते हैं, यदि किसी महापुरुष को तुम थोड़ा देते हो ना थोड़ा, वो तुमको अनंत देके जाते हैं, लेकिन पहले थोड़ा देके तो देखो। प्रसादा छक रहे हैं भाई गुरदास जी और पूछते हैं कि भाई आदम तुम उदास जैसे लग रहे हो, क्या बात है? कहते नहीं महाराज, कोई नहीं, ये तो ऐसा ही है। उसकी पत्नी कहती है कि इनके उदासी का कारण मैं बताती हूँ आपको। 70 साल की आयु हो गई है, वाहिगुरु ने कोई पुत्र नहीं दिया है जिसके कारण ये दुखी रहते हैं, और ये मुझको देख करके और ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि जब लोग मुझको, स्त्रियों को ताने ज्यादा देते हैं ना लोग, स्त्री स्त्री का दुश्मन होता है, ये आप देखना। और मैं कहता हूं कि जब बच्ची पैदा होता है ना, कोई दूसरा नहीं, बहुत सी आती मेरे पास, कहते समझ मेरा भाग ही फूटा है, दूसरी बार भी लड़की हो गया। देखो जब तुमने शुरू में गलत बीज डाल दिया, ये नहीं देखे कि पुरुष और स्त्री में दोनों में कोई फर्क नहीं है, शुरू से ही तुमने गलत बोलने लगे तो समाज तो आप ही बोलेगा। और याद रखना कि स्त्रियां तो प्रायः घर में जाकर के माता पिता का ख्याल रखती है, चिंतन करती है। जिसको तुम लड़के कहते ना लड़के, वो सारी जिंदगी लड़ते ही रहते हैं। लड़के का मतलब लड़ना, सीधी सी बात है। तो जो ज्यादा लड़के के चाहवान है ना, वो ये सोच लें कि सारी जिंदगी वो लड़ता रहे तो लड़का पैदा करो। और यदि तुम ये चाहते हो कि पराए घर में जाकर के भी मेरा शुभ सोचे, तो वो तो कन्याएं अच्छी हैं। सत्संग जी, जब भाई गुरदास जी कहते हैं तुम ऐसा करो, तुम अमृतसर जाओ और वहां पर सच्चा पातशाह साहेब श्री गुरु रामदास जी के दर में जाओ, वहां पर चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा करो, वहां पर कोई चीज की कमी नहीं है। तुम जाकर के देखो, ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष गुरु बताते हैं, कहते तुम सिर्फ सेवा करी जाओ, आगे का तो काम आप पे बनेगा। ओ भाई आदम जी जाता है वहां और जाकर के सेवा करता है, लकड़ियां काटता है, पति पत्नी दोनों, दो बोझा लकड़ी, एक बोझा लकड़ी लंगर में डाल देता है, एक बोझा लकड़ी अपने घर में रखी जाता है। लगभग 6 महीना सेवा करता हो गया। एक समय की बात है, साहेब श्री गुरु रामदास जी महाराज गोविंदवाल साहेब से आ रहे थे, तो एक हफ्ता तक बरसात की झड़ी लगी रही और बहुत ठंड का मौसम, बहुत ठंड का मौसम। सारे संगत जो है सो बारिश के कारण कपड़े भी गिले थे और सारे कांप रहे थे। और ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि अमृतम सिसरे वहनी, कि बहुत ठंड हो और अचानक अग्नि मिल जाए वो अमृत के समान होता है। उधर से किसी सिख ने आके कहा महाराज के लंगर में लकड़ियां है नहीं और कुछ है भी तो गिली हो चुकी है। वहां पर साहेब श्री गुरु रामदास जी महाराज अनाउंस करते हैं कि है कोई गुरु का सिख जो इस वक्त कहीं से लकड़ियां ला करके जला दे, जिससे सारे सिख के जो ठंड हैं वो दूर हो जाए, कपड़े सूख जाए और लंगर तैयार हो जाए, वाहेगुरु उसकी मनोकामना पूरा करेंगे। वो भी बैठा हुआ था वहां पर, तुरंत जो है, क्योंकि भाई गुरदास जी ने मंत्र तो दे ही गए थे, वहां पर हाथ जोड़ के बेनती करता है, सच्चे पातशाह ये 10 दास के घर लकड़ियां हैं सुखी, यदि आपकी आज्ञा हो, आपका हुक्म हो, तो ये दास लंगर में डाल दे। साहेब श्री गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं तुम लकड़ियां जला दो, लंगर में भी डाल दो, लंगर बन जाए, सारे संगत खान जाए, वाहेगुरु कृपा करेंगे, तुम्हारी मनोकामना पूरी। उसने जी सारी लकड़ियां जो है, बहुत लकड़ियां 6 महीने का इकट्ठा किया हुआ था सूखा, वो सारा जो है पति पत्नी दोनों और भी सिंह मिलकर के सारे ले आए, लंगर भी तैयार हुआ, सारे लोग अग्नि जला के कपड़े भी सुखाए, ठंड भी दूर हो गया लोगों का। सब दृश्य साहेब श्री गुरु रामदास जी महाराज जो सच्चे पातशाह हैं वो देख रहे थे। दूसरे दिन दीवान में जब आए तो कहते हैं वो कौन सिख था जो लकड़ियां लाया है और संगत की सेवा किया है, मैं चाहता हूं कि परमात्मा के खजाने से, गुरु के खजाने से उसकी मनोकामना पूरी की जाए। वहां पर सत्संग जी, जब वहां पर भाई आदम आया, अंतर जामी सब कछ जानी, तउ कहे पर घाल पछानी, श्री गुरु रामदास सुखदानी, सब सिखन मह तबह बखानी, खोजहु सिखो सो लियाओ जाए, जिसने घाली घाल सो थाए, कौन मनोरथ है तिसकेरा, सो पूरन करे हैं बिन देरा। बिना देर किए उस व्यक्ति की मनोरथ मनोकामना को पूरी की जाए। दोहरा, सुनत सिख तिस थान को, खोजियो जहां रहंत, ले गमने तत्काल ही संग चलियो हुलसंत। वहां पर एक सिख ने दौड़ा दौड़ा गया और जा करके भाई आदम को ले आया। वहां पर पूछते हैं, क्योंकि 70 साल की आयु है, गुरु महाराज पूछ रहे हैं कि सिखा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इस वक्त गुरु नानक का दर खुला है, जो मांगेगा मिल जाएगा, सच्चे पातशाह नाम दान दो। कहते नहीं, इस वक्त तुम्हारी कुछ और मांग है। दूसरी बार भी क्या, जो मांगना है मांग ले, सच्चे पातशाह नाम दान। कहते हैं कि तुम बोल रहे हो कुछ, लेकिन मन में कुछ और है। वहां पर उनकी पत्नी कहती है, सच्चे पातशाह 70 साल की आयु हो गई है, कोई पुत्र नहीं है। वहां पर साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ध्यान लगा के देखे कि इसके कर्मों में तो पुत्र नहीं है। देखो, साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की महानता, सॉरी साहेब श्री गुरु रामदास जी, क्योंकि सारे गुरु साहिबान एक ही है ना, गलत भी निकल जाए तो हैं तो वही। साहेब श्री गुरु रामदास जी महाराज की महानता देखो, वो दोहरा में लिखा है, भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं, सुनत सतगुरु ध्यान लगाए, देख रहे कुछ नह दर्शायो, कितक देर ते श्री गुरु प्राही, तोहे भाग मह संतत नाही। इम कह नयन मूंद पुन लीने, नीकी रीत खोजबो कीने, देख रहे सब ही विधताहें, आदम भाग बिखे सुत नाहें, बहुत काल लग गुरु बिचारा, पुनः सिख सो बाक उचारा, भली भांत हम खोजन कीना, तोहे भाग है संतत हीना। तुम्हारे भाग में कोई पुत्र नहीं। गुर की सेवा कीनी महाना, कीन महाना, जिसते हमने बाक बखाना, एह कारण ते मैं निज अंश, जन्मो तव गृह वृद्ध वंश। लेकिन तुमने बहुत सेवा किया है और इसी कारण से हमने वचन बोल दिया है, साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोलिया वृद्धा ना जाए। वहां पर साहेब श्री गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कि यों तो हमारे 4 पुत्र होने थे, एक पृथ्वीचंद, दूसरा महादेव, तीसरा साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी, एक चौथा पुत्र होना था, लेकिन वह पुत्र मैं तुम्हारी झोली में पा देता। सात संगत जी, लेकिन वह पुत्र बहुत बड़ा भगत होगा और उसका नाम तुम भक्तू रखना, और इस जगत में आकर वह सिखी का प्रचार करेगा। वही हुआ, समय पाकर के 70 साल की आयु में गर्भवती हुई और जाकर के बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम भाई भक्तू रखा। उसने बहुत सेवा, बहुत गुरुमत का प्रचार किया, और उन्हीं के वंश में एक हुए हैं, राजा हुए हैं कैथल में, है जी, यहाँ पर लिखा भाई उदय सिंह हुए हैं, जिन्होंने सूरज प्रताप ग्रंथ जो है भाई संतोख सिंह जी को अपने पास बुला करके उनकी सेवा करके उन्होंने इस ग्रंथ को लिखे, जो गुरमत का इतिहास है। तो साहेब श्री गुरु नानक के दर में कुछ भी कमी नहीं है, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। इसलिए जो व्यक्ति निर्मल भाव से गुरु चरणों में लगता है, उसका लोक सुखे पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभु आपे मेले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।